ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोजवृष्णे अंधक मधु शुरसेन दशारक श्लाघ्य निहेवितः शश्व कुरु सृंजय पांडुभि स्निग्धस्मितेक्षितो द्रेरे वाक्यैर् विक्रमलीलया नरलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। भोजवृष्णेऽन्धकमधु शुरासेन दशार्हक श्लाघनीयैतः शश्वत् कुरु सृंजय पांडुभि स्निग्धस्मितेक्षितोदरे वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। भोजवृष्ण्यन्धकमधु शुरासेन दशारके श्लाघनीयैतः शश्व कुरु सृंजय पांडुभि स्निग्धस्मितेक्षितोदरे वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रम्यामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभ्यचन अरविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की। भोज वृष्णी तथा वृष्णी वंश द्वारा अंधक तथा अंधकों द्वारा मधु तथा मधुवंशियों द्वारा शूरसेन तथा शूरसेनों द्वारा दशाहरके तथा दशारकों द्वारा श्लाघनीय प्रशंसनीय इहितः प्रयास करते हुए शश्वत सदैव कुरु संजय पांडु भी पांडवों कौरवों तथा सृजन्यों की सहायता से स्निग्ध स्नेहिल स्मित हसी इक्षित माने जाने वाले उदार है उदार वाक्य है वचनों द्वारा विक्रम लीलया वीरतापूर्ण लीलाएं निर्लोकम मानव समाज को रम्यामास प्रसन्न किया मूर्तिया अपने साकार रूप से सर्व अंग रम्यया ऐसा स्वरूप जो अपने सारे शारीरिक अंगों से हर एक को प्रबुद्धित करता है। इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान कृष्ण ने भोज वृष्णि अंधक मधु शूरसेन दशार कुरु सृजन तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान अपने स्नेहिल आचरण अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसे अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमोदित किया। तात्पर्य नरलोकम रम्यमास मूर्तया सर्वारंगम सर्वांग रम्यया शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण आदि रूप हैं अतएव भगवान को यहाँ पर मूर्तया शब्द से बतलाया गया है। मूर्ति का अर्थ है रूप। कृष्ण या ईश्वर कभी निराकार नहीं होते। निराकार स्वरूप तो उनके दिव्य शरीर की अभिव्यक्ति है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि भगवान नर आकृति हैं मनुष्य के स्वरूप में से ठीक मिलते जुलते किंतु उनका स्वरूप हमसे भिन्न होता है। अतएव सर्वारंगमया शब्द बतलाते हैं कि उनके शरीर का अंग प्रत्यंग देखने में सभी को मनोहर लगता है। उनके हंसते हुए मुख के अतिरिक्त उनके शरीर का हर अंग उनके हाथ उनके पांव उनकी छाती भक्तों को मनोहर लगने वाला है। जो भगवान के सुंदर रूप को देखते रहते हैं, जो कभी भी बंद नहीं कर सकते। यहाँ तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज की भागवत कक्षा में स्वागत है। तो शुरू करने से पहले सभी भक्तों से प्रार्थना कि भागवतम पे कुछ बोला जा सके भगवान के भक्तों के गुणगान के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि नौवां स्कंद अब समाप्त होने जा रहा है और इसके बाद करीब 3 श्लोक और बचे हैं। इसके बाद दशम स्कंद शुरू होगा, दशम स्कंद भागवतम का, जिसको कि भगवान के मुखमंडल के समान बताया गया है। और इसको ख़त्म होते होते श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के जो दशम स्कंद, जिसमें भगवान की बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं शुरू होंगी, उसका एक बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं, भगवान आए कैसे, क्या क्या चीज़ें थी। तो इसके पीछे के कुछ वर्सेस में जब ये वंशावली का वर्णन कर रहे थे, तो वर्णन करते करते भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, और बताते हैं किस प्रकार से भगवान ने अलौकिक लीलाएं की, दिव्य लीलाएं थी भगवान की, भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन, और साथ ही साथ एक पूरा माइंडसेट सेट कर रहे हैं परीक्षित महाराज का, कि परीक्षित महाराज कुछ ऐसी जिज्ञासाएं करें आने वाले दशम स्कंद में, जिससे कि ये वस्तु और रोचक बनाई जा सके और सुखदेव गोस्वामी को एक मौका मिल सके भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने का। तो आज का अगर वर्ष देखें तो आज के श्लोक में इस प्रकार बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान कृष्ण ने भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशार, कुरु, संजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमोदित किया। तो आज जो विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो 3 विषय रहेगा। पहला विषय ये रहेगा कि हम देखते हैं कि भगवान के स्वरूप का वर्णन बहुत जगह भागवतम में आता है कि भगवान एक निराकार नहीं है, भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का रूप है। तो उसको लेकर के पहली चर्चा। दूसरी चर्चा हम करेंगे जो इस वर्ष में बता रहे हैं भगवान के कुछ बड़े स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को, वो है मोहक मुस्कान भगवान की, भगवान की स्नेहिल आचरण, भगवान का इतना स्नेहिल आचरण अपने भक्तों के साथ, उनके उपदेश और उनकी गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाएं। ये देखें तो स्निग्ध स्मित इक्षित उदार वाक्य विक्रम लीलया, ये 4 चीजें। उसका नरलोकम रम्या मास मूर्तया सर्वांग रम्या, ये भगवान हर किसी के लिए बहुत ही मनोहर हैं। जो जो भगवान के संसर्ग में आया, संपर्क में आया, उन सब के लिए भगवान बहुत ही प्रिय हैं। और आखिरी जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि हम सब भक्तों के लिए, साधक भक्तों के लिए क्या इसमें शिक्षाएं हैं, जिसको हम पालन करके अपने जीवन में भगवान के सुंदर स्वरूप को साक्षात्कार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। तो इस प्रकार से भागवतम के कई ऐसे वर्सेज हैं जो भगवान के सुंदर मनोहर रूप के बारे में बताते हैं। खास करके एक बहुत ही प्रसिद्ध मायावादी सन्यासी रहे हैं पास्ट में, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो मायावादी है, बेसिकली मायावाद सिद्धांत। और उस मायावाद सिद्धांत में उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की थी कि जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा जो परम सत्य है वो निराकार है, उनका कोई साकार रूप नहीं है, रूप नहीं है। तो उसको हम किसी भी फॉर्म में वर्शिप करें, किसी भी रूप में वर्शिप करें, वो सब एक समान है। बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। इसी प्रकार से देखा जाता है कि उनका कहना है कि जैसे मनुष्य हैं, मनुष्यों ने अपने हिसाब से अपने एक भगवान का निर्माण कर दिया है। हम मनुष्य रूप में हैं, इसीलिए हमने मनुष्य रूप में भगवान बनाया। इसी प्रकार से जो पशु योनि में होंगे, उन्होंने अपने हिसाब से अपने भगवान बना रखे हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जो परम सत्य हैं वो प्रकट भी इस रूप में कई बार होते हैं, मछली के रूप में कभी, कभी शुक्र के रूप में, कभी आधे शेर आधे मनुष्य के रूप में। इस प्रकार से जो जितने भी रूप प्रकट होते हैं वो अंतोगत्वा एक इमेजिनेशन है, एक प्रकार से मनोकल्पना है। और सत्य क्या है कि निराकार, निराकार ही एक सत्य है, बाकी भगवान का जो स्वरूप है वो अपने आप में सत्य नहीं है। तो कहा जाता है कि ये जो व्याख्यान है इसमें जब भगवान के स्वरूप, भगवान के रूप को आप माया द्वारा बनाया बता देते हैं तो इसको मायावाद साफ साफ बोला जाता है। लेकिन जहां तक निर्विशेषवाद की बात है और जहां तक भगवान के निराकार रूप की बात है, निराकार अस्तित्व की बात है, तो वो कहीं हद तक गलत नहीं है। भगवान का एक एस्पेक्ट है निराकार, इसको बताते हैं भागवत में वदंती तत्विदस तत्त्वम यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को तीन स्वरूपों में साक्षात्कार किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे कि जैसे कि एक गांव है, गांव में व्यक्ति कभी किसी ने ट्रेन नहीं देखा, ट्रेन क्या होता है। तो ऐसे करीब तीन बड़े होशियार लोगों को भेजा गया पता करने के लिए कि बताओ ट्रेन क्या होता है, ट्रेन चेक करके आओ। तो जब तीनों गए रेलवे स्टेशन ट्रेन चेक करने, तो वहां पे तीनों खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है। तो दूर से एक व्यक्ति ने देखा बड़ी जोर की एक रोशनी है, जो बहुत जोर की एक रोशनी है जो दिख रही है दूर से। तो एक व्यक्ति का साक्षात्कार इतना था कि जो ट्रेन है वो कोई बहुत बड़ा एक रोशनी का गोला है जिससे रोशनी निकलती है। तो तुरंत गांव भागा और जाके लोगों को बताया कि ट्रेन मतलब वो एक ऐसी स्रोत है जिससे एक रोशनी निकलती है, एक रोशनी है। तो गलत नहीं है, ये सही बात है। लेकिन दो व्यक्ति रुके रहे, उन्होंने थोड़ा उससे और थोड़ा इसका साक्षात्कार करेंगे। और फिर जब उन्होंने देखा क्या आगे कि ट्रेन आई, तो ट्रेन में इंजन थे, डब्बे थे। जब ये चीज देखी तो दूसरा व्यक्ति तुरंत भाग के गया बताने के लिए कि इंजन के ट्रेन थे, ट्रेन के इंजन था, इंजन के पीछे डब्बे थे, तो ये ट्रेन थी। तीसरा व्यक्ति और थोड़ा देर रुका रहा और उसने क्या देखा कि ट्रेन के अंदर आपके टॉयलेट्स भी होते हैं, स्लीपर क्लास भी है, पंखे भी लगे हैं, लाइट्स भी लगी हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, तीनों के डिस्क्रिप्शन सही हैं, लेकिन क्या है इसमें भेद कि साक्षात्कार का डिफरेंस है। श्री राधा राधे रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ की जय। तो यही सेम चीज हम देखने को मिलती है जितने भी उपनिषद होते हैं और जितने पुराण होते हैं। हम ये दो चीजों पे अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में दिखते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन का एक ही है। कहने का अर्थ है कि उपनिषद नीति नीति के सिद्धांत पे कार्य करता है। नीति नीति मतलब क्या स्पिरिट है, क्या मैटर है, क्या सत्य है, क्या आध्यात्मिक है, चिन्मय वस्तु है और क्या जड़ वस्तु है, इसको बहुत ही भेद करते करते उपनिषद बताता है। इसलिए उपनिषद को समझना इतना आसान नहीं होता है, और खास करके जो मायावादी और इम्पर्सनलिस्ट होते हैं उनके लिए उपनिषद एक ऐसा पुस्तक होती है जिससे कि वो कोई भी अपनी मनगढ़ंत व्याख्या कर सकते हैं, उससे ये फ्रीडम उनको संभव उसमें मिल जाती है। और लेकिन पुराणिक लिटरेचर्स क्या होते हैं, उसमें बहुत सी स्टोरियाज भरी होती हैं, बहुत सी कहानियां भरी होती हैं, जिसको लीलाएं मान के कई बार जो मायावादी क्लास होता है उसको रिजेक्ट कर देता है कि ये सब लीलाएं हैं, काल्पनिक लीलाएं हैं, इनका कोई सत्यता नहीं है इनकी। लेकिन अपने वैष्णव संप्रदाय में इन दोनों ही चीजों को हम लेके चलते हैं। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि की विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। कहने का मतलब श्रुति भी और स्मृति दोनों को ही एनकम्पास करते हुए चलते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण हमें कई ऐसे महान आचार्यों के जीवन में मिलता है, जैसे कि श्री सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी हम जानते हैं कि अपने जन्म से पूर्व ही एक मुक्त जीवात्मा थे। 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहना और उसके बाद जैसे ही गर्भ से प्रकट हुए वैसे ही वो जंगल की ओर निकल गए। लेकिन इतनी तपस्या और इतना ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद इतना उनके अंदर इतनी पवित्रता थी, शुद्धता थी, कि जिस समय उनके व्यासदेव द्वारा भेजे हुए दो शिष्यों को जब उन्होंने दो श्लोक खास करके जब सुने, ये पहला एक श्लोक आता है तीसरे स्कंध के हो बकी यम स्तन का अलकूटम, और दूसरा भगवान के सुंदर स्वरूप के बारे में बरहा पीड़म नटवर वपु। तो ये जब श्लोक उन्होंने सुना था बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण कर्णिकारम विप्रद वास कनक कबीशम वैजंती समालम, तो ये जब पूरा का पूरा वर्स इन्होंने जब सुना तो इस सुनने मात्र से उनके समक्ष भगवान का वो सुंदर रूप प्रकट हुआ, साक्षात्कार हुआ उस रूप का, और उस रूप के प्रति इतना स्ट्रांग उनका आकर्षण हुआ कि इस रूप को समझने के लिए, उसको और डिटेल्स में जाने के लिए वो वापस पुनः व्यासदेव के पास आए और आगे उन्होंने उसकी पूरी व्याख्या सुनने की कोशिश की। वही प्रश्न सुत गोस्वामी पहले स्कंद के भागवतम के सातवें अध्याय के आठवें नौवे इस इन दो आठवें या नौवे किसी एक श्लोक में पूछते हैं एक चीज को कि सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण रूप से एक मुक्त जीवात्मा थे, उनको ऐसी क्या पड़ी कि उन्होंने पूरा का पूरा भागवतम पढ़ा किससे, व्यासदेव से। क्योंकि ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंडेबल नहीं है कि कैसे किसी पुराण को कोई एक मुक्त जीवात्मा बैठ के पढ़े, जो कि पुराण एक उस दृष्टि से कई बार इमेजिनेशन बताई जाती है कि एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, कहानियां हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सत्यता से इसका लेना देना नहीं है। तो उसी के आंसर में बहुत ही अच्छा एक वर्स, बहुत ही फेमस वर्स जिसपे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत व्याख्याएं की हैं दो स्थानों पर, खास करके सनातन गोस्वामी के साथ जब उनका मिलन होता है तब, और सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलन होता है तब। और बहुत ही फेमस वर्ष ये प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय का दसवां श्लोक है, आत्माराम शमनयो निर्गंति अपीरुक्रमे कुर्वंती अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है, आत्माराम शमनयो, कि आत्माराम व्यक्ति भी भगवान के सुंदर स्वरूप से आकर्षित होता है, खास करके गुणों से भगवान के आकर्षित हो जाता है, जो कि आत्माराम व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है संसार से, वो अपने आप में संतुष्ट है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी वो क्या है, वो भगवान के इन सुंदर गुणों से, सुंदर स्वरूप से आकर्षित होता है। इसी चीज को फर्दर व्याख्यान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत के एक चैप्टर है, एक अध्याय है, उसमें जब सनातन गोस्वामी को जब ये समझा रहे हैं, पूरी की पूरी शिक्षा दे रहे हैं, इस पूरी की पूरी शिक्षा में इस चीज को एक चैप्टर में बताते हैं, वो अध्याय 21 आता है मध्य लीला का, इसमें बताते हैं कि भगवान के जो ऐश्वर्य हैं और जो भगवान के माधुर्य हैं, ये हम देखने को मिलता है खास करके भगवान के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में। खास करके माधुर्य की बात करें तो भगवान के जो सुंदर स्वरूप है और भगवान के जो वेणु हैं, ये दो चीजें स्पेसिफिक बहुत डिटेल में डिस्क्राइब की है इसमें, कि ये बताया जाता है कि भगवान का सुंदर स्वरूप क्या है, तो सुंदर स्वरूप की विशेषता क्या है। तो इसके कुछ प्यार है, मैं जस्ट को पढ़ता हूँ आपके लिए। तो इसमें बता रहे हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा, उनका मन माधुर्य प्रेम की माधुरी से निमग्न हो गया और उन्होंने श्रीमद भागवत का निम्नलिखित श्लोक सुनाया। श्लोक तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक है, जो उद्धव विदुर को बता रहे हैं। ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के उपयुक्त एक रूप प्रकट किया। यह रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य संपदा का परम धाम था। उसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम है। उसका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। इस रूप में वे ग्वाल बाल हैं, वे अपने हाथ में वंशी लिए रहते हैं और उनकी किशोरावस्था नित्य नूतन बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी हैं। यह सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं का सर्वथा अनुरूप है। हे प्रिय सनातन, कृष्ण का मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। हाँ, महाप्रभु का एक अपील है सनातन गोस्वामी से, कह रहे हैं कि जरा इसे समझने का प्रयास करो इस स्वरूप को, कि कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगतों को प्रेम के समुद्र में डुबा सकता है। वे तीनों जगतों के सारे जीवों को आकर्षित करने वाला है। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। रत्न जैसे यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। तो बड़ा सिग्निफिकेंट एक लाइन है यहाँ पे, इसको महाप्रभु बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं, योग माया विचित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोक के दिखाई थे, ए रूप रत्न भक्त गणे गुण धन प्रकट कैला नित्य लीला है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य रूप है, वो इतना आसानी से समझ पाना बहुत मुश्किल है। इतना आसानी से नहीं समझ में आ सकता भगवान का सुंदर स्वरूप। इसीलिए भगवान को अपने एक अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होकर इसको प्रदर्शित करना पड़ता है, और सेवा के द्वारा हम इस चीज को समय के साथ समझ पाते हैं कि भगवान का ये सुंदर स्वरूप क्या है। और अच्छा लिख रहे हैं, कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का अर्थ है, जब तक अंतरंगा शक्ति की पूर्ण कृपा ना हो, तब तक भगवान के सुंदर स्वरूप को हृदय में प्रकट कर पाना बहुत मुश्किल है। ये शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। शुद्ध सत्व का रूपांतर है, कहने का अर्थ है, शुद्ध सत्व की अवस्था में ही ये रूप जाके प्रकट होता है, अन्यथा ये प्रकट नहीं होता है। रत्न जैसे यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है, रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। तो ये हम देखने को मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसको बहुत विस्तार से और भी आगे बता रहे हैं कि भगवान के सुंदर स्वरूप का क्या क्या ऐसा मोहक चीज है जो पूरे पूरे विश्व में, पूरे पूरे संसार में हर चीज को आकर्षित करती है। देखिए स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि इंद्रिय विषय वस्तु पांच प्रकार की होती है, शब्द, गंध, स्पर्श, रूप और दिस इज रस, पांच पांच चीजों में होती है। तो इन पांचों में रस और रूप, ये खास करके दो ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिसका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है किसी चीज में। देखिए इसको जैसे समझने का प्रयास करिए, इसमें रूप जैसे है, कोई भी चीज हो जितनी रूपवान हो, जितनी सुंदर हो, वो उतना मोहक, उतना आकर्षक करती है। कोई गाड़ी देखिए, गाड़ी अगर जितनी ज्यादा उसका मॉडल नया आया होगा, जितना नया डिजाइन दिया होगा, वो उतना ही मन को आकर्षित करता है। व्यक्ति 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक खर्च कर सकता है खाली उस गाड़ी के डिजाइन के लिए। सिंपल फोन्स होते हैं, अब स्लीक मोबाइल, सब देखिए जितने मोबाइल्स आते हैं उनमें भी देखिए इतने सुंदर सुंदर डिजाइन्स होते हैं, खाली उसके लिए व्यक्ति 40,000 50,000 खर्च कर सकता है उस फोन को लेने के लिए। ऐसे आप किसी भी चीज को एनालाइज करिए, आप देखिएगा रूप ऐसी वस्तु होती है जो मन को बहुत आकर्षित करती है। सिमिलरली ये चीज आती कहाँ से है, जन्मादिश्यतः, ये भगवान इसका स्रोत है। और जब तक भगवान के सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार भक्त अपने जीवन में नहीं कर पाते तब तक क्या है, तब तक ऐसे बाहर के जितने भी रूपमय वस्तु है उसमें हमारा आकर्षण बना रहता है। ये भगवान के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए भगवान की मोहक मुस्कान ये हर किसी को आकर्षित करती है संसार में। हम गोपियों के बारे में तो सुनते हैं, गोपी गीत में भी कई जगहों पे ऐसा वर्णन आता है कि गोपियां कैसे भगवान के सुंदर मुस्कान से मोहित हैं। लेकिन बताते हैं हर भक्त किसी भी रस में स्थित हो, भगवान अपनी मुस्कान से उनका हृदय जरूर जीतते हैं। ऐसा महाभारत में एक प्रसंग आता है जब पूरा का पूरा युद्ध स्थली में, युद्ध भूमि पे सारे के सारे सैनिक तैयार हैं, युद्ध होने वाला है, शुरुआत होने वाली है। तो भीष्म निरीक्षण कर रहे थे पूरी की पूरी सेना का, दोनों पक्षों का, क्योंकि भीष्म पहले के 9 से 10 दिन के आसपास ये आपके कमांडर इन चीफ थे कौरव आर्मी के, सेनापति थे। तो जब वो पूरे के पूरे इस युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे, सारी सेनाओं को देख रहे थे, अपने कौरवों की सेना जितनी थी उनको देख रहे थे और साथ ही साथ जो सामने पांडवों की सेना उनको भी देख रहे थे, जब इन दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर रहे थे, शक्तियों का आकलन कर रहे थे, तो अंततः उनको ये चीज दिखी कि इस पूरे के पूरे युद्ध स्थली में जो सबसे डेंजरस चीज है वो क्या है, क्या वो अर्जुन का गांडीव है कि वो भीम की गदा है, कि वो युधिष्ठिर है कौन ऐसा, कि कर्ण के पास या दुर्योधन के पास, किसके पास इतनी शक्ति है सबसे खतरनाक है वहां पे। और फाइनली उन्होंने ये चीज रिवील की, जो सबसे खतरनाक चीज जो इस पूरे युद्ध स्थली में है वो है कृष्ण की मंद मुस्कान जो पूरे के पूरे युद्ध में कयामत ढाएगी अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध में कहीं से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक मिनियल, एक निम्न सेवक के भांति खाली रथ हाकेंगे और पूरे के पूरे युद्ध का काया पलट वही करेंगे। इस चीज को भीष्म देव ने अपनी प्रार्थनाओं में भी बताया, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में बताया। भंदा भगवान के बहुत ही सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं वो, अंत में जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं उस समय बता रहे हैं कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, अर्जुन पे प्रहार कर रहा हूँ और मेरे द्वारा जो चलाए हुए तीर हैं, बाण हैं, वो भगवान के दिव्य शरीर पे चोटें कर रहे हैं। उन चोटों से क्या हो रहा है, भगवान के शरीर से रक्त प्रवाह हो रहा है और भगवान के केश पूरे खुल गए हैं और केश खुलने के कारण क्या हो रहा है, जो घोड़े जब दौड़ रहे युद्ध भूमि पे उससे जो धूल उठ रही है वो जो भगवान के केशों में जाके लग रही है, तो इतना मनोहर दृश्य है अपने आप में कि भगवान के खुले हुए बाल जिनमें घोड़ों के टापों से उड़े हुए धूल, भगवान का शरीर पे पूरे के पूरे घाव से बहता हुआ रक्त, तब भी भगवान इतने मनोहर हैं, इतने सुंदर हैं। ऐसी अवस्था देखिए, इतने घायल है व्यक्ति, अगर ऐसे देखें पूरे घायल है, चोट से वो है, पीड़ित है, उसके बाद उसका रूप कैसे मनोहर हो सकता है। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है भीष्म देव कह रहे हैं कि ऐसे ही रूप का स्मरण करते हुए मैं शरीर त्याग करना चाहता हूँ कि रूप बहुत मनोहर है भगवान का। ये है दिव्यता, भगवान के शरीर की दिव्यता, कि भगवान के शरीर से अगर रथ प्रवाहित भी हो रहा है, भगवान के केश भी खुले हैं, मतलब पूरा एकदम मेहनत कर रहे हैं भगवान शरीर से, एकदम कह रहे हैं बालों माथे से पूरा का पूरा पसीने टपक रहे हैं और ये सुंदर स्वरूप का मैं ध्यान करते हुए अपना शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। उसी प्रकार से दूसरा एक गुण बताते हैं भगवान का, स्नेहिल आचरण। इसमें बता रहे स्निग्ध स्मिता, स्निग्ध स्मिता मतलब भगवान की बहुत ही मीठी और बहुत ही मंद मुस्कान। Then it says ikshitar udarer vakyer vikram lilaya. इसमें कह रहे हैं कि अपने स्नेहिल आचरण के द्वारा भी भगवान भक्तों को बहुत मोहित करते हैं, और ये भी हमें बहुत जगहों पर देखने को मिलता है. भगवान का बहुत ही स्नेहिल आचरण है हर किसी के प्रति, भले वो व्यक्ति कैसा भी भाव भगवान के प्रति रखे, लेकिन भगवान का जो भाव हर जीवात्मा के लिए है वो स्नेह का है. हाँ, स्नेह का है. भक्तों के लिए खास करके विशेष प्रेम का है, लेकिन हर किसी से भगवान का स्नेह का भाव है. महाभारत में आता है जब दुर्योधन के पास भगवान खुद जाते हैं एक शांति दूत के रूप में, और बोलते हैं कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करिए और युद्ध को छोड़ दीजिए आपसी समझौते से. इस पूरे डायलॉग में, इस पूरा बहुत लंबा ही अपने आप में चर्चा है, उसके बावजूद भी भगवान का बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार था दुर्योधन के साथ, जो कि देख सकते हैं कि भक्त नहीं थे, स्टिल भगवान का बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार है. इवन कई जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे शिशुपाल इतना कुछ बोल रहे थे, तो कई बार हमें बाह्य दृष्टि से दिखता है कि भगवान ने सुदर्शन चला करके उनका अंत किया, लेकिन स्टिल वो स्नेहपूर्ण व्यवहार था भगवान का. क्यों? क्योंकि उन्होंने शिशुपाल को वो गति दी जो गति बड़े बड़े योगी बड़े बड़े ज्ञानियों को प्राप्त नहीं हो सकती लाखों लाखों सालों तक हिमालय पर तपस्या करने के बावजूद. ये बहुत बड़ा स्नेह है भगवान का कि आपको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं जिसके लिए आप योग्य भी नहीं हो. आप प्रैक्टिकली एक तरीके से आप भगवान के प्रति अपराध कर रहे हो. इतना बड़ा भगवान का स्नेहिल आचरण था अपने भक्तों के प्रति. अपने उपदेश, हाँ, अपने उपदेशों को भगवान ने उपदेश भगवद गीता में दिए. हाँ, उदार वाक्य मैग्नानिमस, इसको उदार वाक्य. उदार क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है. ये उदारता है भगवान की कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं. अन्यथा अगर भगवान अपने बारे में ना बताएं तो कभी भी किसी को पता नहीं चल सकता भगवान क्या है, सत्य क्या है. सत्य को भगवान इस जगत में प्रकाशित ना करें तो बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए समझ पाना भगवान परम सत्य क्या है. तो ये भगवान का उदारता है कि भगवान अपने बारे में बताते हैं. और विक्रम लीलिया भगवान की, जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ जैसे कि गोवर्धन पर्वत धारण करना, ऐसे भगवान की बहुत सी विक्रम लीलिया है. इतने सारे असुरों को मारना भगवान ने उसके प्रकार से, जो द्वारका में थे तो उस प्रकार से कितने सारे युद्ध भगवान ने किए, और बहुत ही अनोखे ढंग से पूरे युद्ध का वर्णन आता है. बट यहाँ स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन में श्री प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत धारण की लीला, कि अपने आप में बड़ी ये अलौकिक और दिव्य लीला है कि भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया, जो कि इमेजिनेशन से परे है, ये कल्पना से परे है कि 7 वर्ष का कोई बालक अपनी कानी उंगली, हाँ, इतनी छोटी सी उंगली से आप उठा सकते हैं पूरे गोवर्धन पर्वत को. यह संभव है, बिल्कुल असंभव है किसी लिए कर पाना. तो गोवर्धन पर्वत को धारण करना, और साथ ही साथ आगे बता रहे हैं कि भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमोदित किया, सारे मानव समाज को. इसका बहुत सारा उदाहरण आता है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में से एग्जांपल मैंने आपको भीष्मदेव का दिया. उसी प्रकार से महारानी कुंती की प्रार्थनाएं आती हैं. महारानी कुंती भी भगवान के बहुत ही सुंदर स्वरूप का वर्णन करती हैं. नम पंकज नाभाय, नम पंकज मालिने, नम पंकज नेत्राय, नम पंकज आंग्रे, ऐसे भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप का वर्णन करती हैं कि भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, भगवान की नाभि कैसी है. इस प्रकार से भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन. इवन गजेंद्र भी जब इतने कठिन परिस्थिति में थे, जब घड़ियाल उनको पकड़ रखा था और 1000 वर्षों तक युद्ध चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है कौन किस पे हावी होता है, उस दौरान भी जब अपने आत्मसमर्पण के भाव में गजेंद्र ने जब प्रार्थना की भगवान से, तो उन्होंने एक चीज बताया था, अरूप रूपाय. कह रहे हैं कि वैसे तो भगवान आपका कोई स्वरूप भौतिक नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है आपका, लेकिन स्टिल आपका एक आध्यात्मिक स्वरूप है. ये देखिए, ये साक्षात्कार एक हाथी शरीर में भी क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति कहीं ना कहीं फलित होती है, और उनको हुआ कि भगवान का जो स्वरूप है वो एक नित्य स्वरूप है जो प्रकट होता है. उसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने कई ऐसे ऐसे सेक्शंस में, अपने कई ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस में भगवान के स्वरूप के बारे में बारंबार इस चीज को एम्फोसाइज किया है. लास्टली इसको हम इस चीज से डिस्कस करते हैं कि जो हम साधक भक्त हैं, हम सबके जीवन में इस रूप का कैसे प्रकट्य हो सकता है, कैसे प्रकट हो सकता है. तो इसके संदर्भ में भागवतम के 2 स्कंद में, ये 8वें और 9वें अध्याय में बताया जाता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार किया था भगवान के स्वरूप का. तो हिस्ट्री इस प्रकार से थी कि ब्रह्मा जी जब पूरा का पूरा सृष्टि का संहार हो चुका था, सृष्टि फिर से उत्पत्ति करनी थी, नई सृष्टि का निर्माण करना था, तो ब्रह्मा जी जब बैठे थे कमल के नाल पे, कमल के वल पे जो बैठे थे, तो उन्होंने हर तरफ आंधी तूफान जलाशय और कई ऐसी ऐसी चीजें देखी जो बहुत डरानी वाली थी। तो उस पूरे अंधकार में उनको खाली दो ही शब्द सुनाई दिए, वो शब्द थे त और प, तप। ये शब्द सुनाई दिया तप। जब उन्होंने शब्द सुना तप, तो उन्होंने उस चीजों को एज इट इज फॉलो किया। हाँ, एज इट इज, तप मतलब तपस्या। और उन्होंने हजार वर्षों तक तपस्या की। आगे बताते हैं, हजार वर्षों की तपस्या के बाद जब उनका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल शुद्ध हो गया, उस शुद्ध अवस्था में, विशुद्ध अवस्था में, वो भगवान का स्वरूप उनके समक्ष प्रकट होता है। और प्रभुपाद जी उसी के संदर्भ में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 4th श्लोक में ये बताते हैं कि जो स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ ना, वो कोई साधारण भौतिक स्वरूप नहीं था। क्यों साधारण भौतिक स्वरूप नहीं था वो? क्योंकि सारे के सारे भौतिक स्वरूप जितने भी संसार में प्रकट हुए हैं, वो सब ब्रह्मा ने ही बनाए हैं, ब्रह्मा ने ही पैदा किए हैं। जितने भी रूप हम देखते हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हम देखते हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं संसार में, वो सब ब्रह्मा की संरचना है। तो ये जो स्वरूप प्रकट हुआ ब्रह्मा के आगे, ये ब्रह्मा की संरचना नहीं थी। हाँ, ये ब्रह्मा की संरचना नहीं थी, मतलब ये क्रिएशन से पहले का स्वरूप एक है। इसी चीज को शंकराचार्य भी कहते हैं नारायणो परो अव्यक्तात्, कि जो नारायण है वो इस सृष्टि से परे हैं, इज बियॉन्ड दिस क्रिएशन। और इसीलिए उनका जो स्वरूप है इससे ऊपर है। उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद एक चीज बताते हैं कि हम सबके लिए इतना आसान नहीं है इसको समझ पाना, भगवान के स्वरूप को। इसीलिए जब हम नाम से शुरू करते हैं चीजों को, नाम से कहने का अर्थ है जो हम भी ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, मतलब आध्यात्मिक शब्द ध्वनि से शुरू करते हैं अपनी क्रियाओं को, तब जाके एक दिन स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं नाम रूप गुण लीला ये सब एक एक करके धीरे 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 भक्ति जीवन में प्रकट होती है। सबसे पहली अवस्था नाम, यानी चैंटिंग, जो हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप करते हुए हम कितने उसको ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, कितने सही मनोस्थिति में उसका जप कर रहे हैं, इन सब चीजों को अगर प्रॉपरली हम कर रहे हैं धैर्य के साथ। क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी की तपस्या हजार वर्षों की थी, देवताओं के युगों में, देवताओं के युगों में हजार वर्षों की तपस्या थी। तो सेम चीज है कि अगर हम भी ये नाम जप, जो साक्षात कृष्ण है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसका बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करते हैं, तो धीरे धीरे जब ये नाम प्रकट होता है, तो नाम प्रकट होने के साथ साथ ये नाम अपने रूप को प्रकट करेगा, रूप, उसके बाद ये गुणों को प्रकट करता है और फिर लीलाओं को प्रकट करता है। जैसे कि बताया जाता है जितने भी भक्त सेकंड इनिशिएटेड हैं, जो काम गायत्री जप करते हैं, तो उस काम गायत्री को भी भगवान का मूर्तिमान रूप बताया जाता है। मूर्तिमान रूप होता है वो, जिसमें कि 24.5 अक्षर होते हैं और जो चंद्र के समान बताए जाते हैं। तो भगवान के अलग अलग शरीर के हिस्सों के वर्ण है उसमें, और सब के सब चंद्र को सिंबलाइज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो शब्द ध्वनि है, शब्द ध्वनि को जितना सीरियसली लें और उतना सीरियसली उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, उतना ही जल्दी हम देखेंगे क्या होगा समय के साथ कि दिस रूप, भगवान का जो सुंदर स्वरूप है जिसकी माधुरी पूरी मेंशन की गई, अगर इसको डिस्क्राइब करने लगे तो बहुत भक्त हो सकता है कि काफी लोग सो जाएं, क्योंकि विस्तार से वर्णन है इसका, क्योंकि माधुरी को रिलिश कर पाना, समाव इसको टेस्ट कर पाना, उसके लिए समाव एटलीस्ट नॉट फॉर मी, इसको रिलिश कर पाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसलिए इसको पढ़ने में इसको अवॉइड किया मैंने। पहले तो मैं सोचा था पढ़ के इसको सुनाया जाए, लेकिन फिर लगा कि इसको सुनाने में बहुत बोरिंग सी क्लास हो सकती है, क्योंकि रूप रूप और बहुत विस्तार से रूप का वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं, गोपियों के भावावेश में आके वर्णन कर रहे हैं उसका, जिसको अप्रिशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जस्ट मैंने जस्ट सोचा कि इसको इस रूप से देखें कि हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है। तो शब्द ध्वनि, जितना ज़्यादा इस शब्द ध्वनि को अपने जीवन में हम अच्छे से फॉलो करते हैं ना, उतना जल्दी है हमें को भगवान के सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। तो मैं यही विराम देना चाहूँगा, आप में से किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणियाँ तो कर सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे बताया। जैसे आपने बताया कि भगवान का सबसे प्रेम होता है, सबके भगवान सबको बहुत स्नेहिल दृष्टि से देखते हैं, जैसे शिशुपाल जी का उदाहरण दिया, जौन का उदाहरण दिया, तो कई बार हमें ये भी सुनने हम पढ़ते हैं या देखते हैं कि जब भक्तों को ही ना बहुत भगवान बहुत टेस्ट करते हैं तो पूरा सरेंडर चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने बोले आइसक्रीम खाने की इच्छा रहेगी तो वापस आना पड़ेगा, तो फिर भगवान वहां पर प्रेम नहीं करते भक्तों से जब ऐसी स्थिति होती है तो।
भगवान का प्रेम भगवान के भक्तों के लिए असीम है। कहने का अर्थ है कि भगवान इस भौतिक सृष्टि की रचना ही प्रेमवश करते हैं। कहने का अर्थ है कि बड़ा सरल सा उदाहरण आता है, कई बार होता है ना कि अगर भक्त भी चाहते हैं कोई ऐसी इच्छा जो भगवान की इच्छा से स्वतंत्र हो तो भगवान भी उसमें पूरा सहयोग करते हैं कि उसको भी पूरा करके एक बार देख लो शायद संतुष्टि मिल जाए। तो पूरी पूरी गीता का सार ही है कि किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से एक कर लें। जिस दिन वो एक हो गया तो वही मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा सक्सेस बताया गया है। तो कहीं ना कहीं भक्तों में जो भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट डिजायर्स रह जाती हैं भगवान से अलग होकर के, बस भगवान उसको शुद्धि करते हैं। तो इसीलिए भगवान स्नेही कर रहे हैं। अगर एक पिता अपने बेटे को किसी गलत चीज के लिए मना कर रहा है या हो सकता है पिटाई भी कर रहा है तो अंतोगत्व स्नेही है, इसलिए कर रहा है, बस द्वेषवश तो नहीं कर रहे वो।
किसी भक्त ने 99 बातें पूरी कर ली, 1% नहीं कर पाया वो। किसी भक्त ने 99% कर ली, 1% नहीं कर पाया, उसकी कोई कहीं ना कहीं रह गया, कुछ रह गया, तो फिर भगवान को धाम मिलेगा नहीं मिलेगा उसको क्या?
हाँ, फिर नेक्स्ट लाइफ में एक मौका और देंगे भगवान। जैसे भरत महाराज के साथ देखने को मिलता है हमें कि हिरण बने लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं मौका नहीं दिया, फिर से मौका दिया जड़ भरत के रूप में, जो बचा हुआ 1% उसको पूरा करने के लिए। मतलब गाड़ी तो हमें चलानी है अंतोगत, भगवान खाली सहयोग कर सकते हैं उसमें।
He has to take birth again.
Obviously, when we are not 100% purified, तब तो लेना ही पड़ेगा एक बार जन्म दोबारा से।
प्रभुपाद जी ने बोले आप 60% कर लो, कुछ कमी रह गई मैं पूरा कर दूंगा, मैं आपको बैकडोर से लेके जाऊंगा तो वो सब क्या है?
उसके लिए फिर बहुत ज्यादा प्रभुपाद पे हमें निर्भर होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रभुपाद की डेडिकेशन होना पड़ेगा उसके लिए। अगर आचार्य के कहे हुए कोई वाक्य है ना तो कभी गलत नहीं है, सत्य है ना, फिर तो इसके लिए फिर प्रभुपाद को पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। 70% तब है जब फुली डेडिकेटेड है प्रभुपाद के पास, तो कंडीशंस अप्लाई होता है ना, कोई भी चीज
हमें आचार्यों पे डिपेंड होना पड़ेगा ना, हमें आचार्यों पे ही डिपेंड होना पड़ेगा ना।
ऑब्वियसली
बिल्कुल हम भगवान से डायरेक्ट नहीं कर सकते,
भक्ति का एक अंग ही आचार्य उपासना
है, आचार्यों से डिपेंड कर सकते,
उसके बिना तो बहुत ही मुश्किल,
यही हमारे लिए रास्ता है ना,
आचार्य उपासना।
हरे कृष्ण, धन्यवाद।
धन्यवाद, आपका बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। मेरा एक प्रश्न था कि जो ऐसे मायावादीज हैं, ब्रह्मवादीज हैं, तो ये किन किन स्क्रिप्चर्स को प्रमाण मानते हैं? जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम भागवत पुराण है, श्रीमद् भगवद् गीता है, जिसको वैसे गीता उपनिषद बोला जाता है पर उसको मानते नहीं है, श्रुति में मानते नहीं है, फिर चैतन्य चरितामृत है, तो मायावादी ब्रह्मवादी किस चीज को प्रमाण मानते हैं, और कैसे अगर हम कुछ तर्क वगैरह करते हैं तो किस प्रमाण के द्वारा उनसे हम तर्क वितर्क कर सकते हैं?
जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें इतना यह है कि उसमें यह बताया जाता है कि जितने श्रुति हैं उनको प्रमाण मानते हैं। श्रुति मतलब जो भगवान की एज इट इज वाक्य हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो श्रुति में खास करके उपनिषद को बहुत ज्यादा वो एम्फोसाइज करते हैं, उपनिषद को बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं वो। तो अगर आप इसीलिए जो हमारे सबसे अनुपदाचार्य जीव गोस्वामी देखें तो उन्होंने अपने जितने भी संदर्भ लिखे हैं संदर्भों में उन्होंने बहुत से उपनिषद को कोट किया है। इवन भक्ति सांसरी ठाकुर की कितनी राइटिंग्स हैं उसमें आप देखोगे अब तो बहुत से उपनिषद को कोट किया हुआ है, ताकि वो एक एक्चुअली एक लर्नेड रिलीजियस सर्कल में उपनिषद को बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है पुराणों के मुकाबले, स्टोरीज को ज़्यादा बड़ा प्रमाण नहीं माना जाता है। सेकेंड थिंग कि हमारे संप्रदाय में भी दोनों ही चीज़ों को लेकर चला गया, श्रुति स्मृति पुराण आदि दोनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट। जहाँ तक गीता की बात है, गीता श्रुति स्मृति दोनों ही हैं। श्रुति इसलिए है क्योंकि भगवान द्वारा बोली गई है, स्मृति का पाठ इसलिए रखा जाता है क्योंकि महाभारत के बीच में आती है वो। तो दोनों ही चीज़ों पे इवन शंकराचार्य ने जो गीता महात्म्य मेंशन किया हुआ है, वो शंकराचार्य ने यही मेंशन किया है कि ये अपने आप में पूरा समरी स्टडी है सारे उपनिषद का। उसके बाद अभी शंकराचार्य ऑलमोस्ट कितना ऑलमोस्ट आपका 1000 साल हो गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मायावाद संप्रदाय भी एज इट इज मेंटेन्ड है, उसमें भी ग्रेजुअल बहुत डिविजन्स हैं, बहुत डाइवर्जेंस हैं और बहुत से डिविएशंस भी हैं। तो अगर एक बोनाफाइड किसी संप्रदाय में जाएं तो आज भी मानते हैं कि उपनिषद एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो प्रमाण स्थापित करता है परम सत्य का। जैसे जस्ट फ्यू डेज पहले मैं पढ़ रहा था भक्तिदान वैभव में, जब श्री भक्ति चंद ठाकुर भी थे, वो भी करीब डेढ़ से दो साल के लिए, एक से डेढ़ साल के आसपास का समय था, उन्होंने पुरी में जो गोवर्धन मठ है शंकराचार्य का, उन्होंने काफी समय वहां बिताया था। तो काफी लोगों को ऐसा लग, वहां के लोगों को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि ये तो मायावादी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया उन्होंने लग रहा है, लेकिन एक डेढ़ साल वो पढ़ने गए थे खाली वहां पे समझने के लिए कि क्या इनके तर्क होते हैं ताकि उसका खंडन कर सकें। तो ये चीज आती है। तो बेसिकली हैं ऐसे आज भी प्रमाणिक मायावादी भी हैं प्रमाणिक जो कि इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो उपनिषद एज पर आई नो कि उपनिषद एक बहुत बड़ा वो होता है जो उनको प्रमाण मानते हैं, उनको बहुत जगह कोट करते हैं, और वेदांत तो है ही, वेदांत सूत्र तो है ही जिसको मानते हैं। दो चीजें एटलीस्ट और देखने पड़ेंगे। और
यहाँ पे जैसे विक्रम लीलाया है कि भगवान के अलौकिक लीलाएं, और ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी मतलब इन पर्टिकुलर गोवर्धन लीला का क्यों मेंशन करते हैं ऐसे कुछ?
हाँ वही मैंने जब पढ़ रहा था, मैं कहीं लग रहा कि बहुत सारी लीलाएं भगवान की, तो कोई भी अलौकिक लीलाएं या सारी लौकिक हैं, बट गोवर्धन पर्वत ऐसी लीला है ना जो कि एक आम इंसान को भी बहुत अप्रिशिएट कर सकता है कि 7 साल की उम्र में इतना बड़ा पर्वत उठाना बहुत बड़ी बात है ना। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग की ऐसा क्यों एक्चुअली प्रभुपाद ने इसको मेंशन किया हुआ है। बहुत सी लीलाएं हैं बट गोवर्धन पर्वत लीलाएं भगवान ने, प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली मेंशन की है कि अलौकिक हैं, ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। वैसे तो सारी लीलाएं अलौकिक हैं भगवान की, जो भगवान के पूतना को 6 महीने की उम्र में कोई नहीं मार सकता, 2 महीने की उम्र में कोई बच्चा नहीं मार सकता इतने बड़े राक्षसी को, लेकिन स्टिल ये प्रभुपाद का अपना भाव है गोवर्धन पर्वत की लीलाओं को लेकर। बाद में आए थे जी यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन इस प्रकार से, जैसे कई बार ना उपमाओं में दी जाती हैं चीजें कितने समय तक किया, जैसे कई बार होता है कि राजा नृग ने इतनी गांवों को दान दिया जितनी पृथ्वी में धूल की कणें होती हैं, तो एक प्रकार से उपमा है कि इतना है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो वहाँ, क्योंकि टाइम भी एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा, टाइम तो एग्जिस्ट कर रहा है उस समय, बट वो कैलकुलेशन समय उस ट्रांसलेशन में ये मेंशन किए कि देवताओं के 1000 वर्ष, ये कैसे कैलकुलेट किए।
कुछ परिचय की चर्चा कर
इन सारे वंशों के बारे में,
इनका परिचय, ये जो अंधक कौन, अंधक में कौन आएंगे, मधु में कौन आएंगे?
अच्छा ये पीछे के श्लोकों में दिया हुआ था, पीछे के वर्सेस में ये मेंशन किया है कि कौन किस वंश में आ रहा है, तो डिटेल में बताया हुआ उसमें कौन किस में आ रहा है। अलग से बता देता हूँ आपको।
कलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे
जय। हरे गौर। इस ग्रेस वैकुंठ ब्रज प्रभु की जय।